ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवता उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
27वां श्लोक है, मुझे 26 बोला गया था, कोई बात नहीं, चलिए।
अब्जक्षा कतिचित् स्मासान् वायुभोजना आराध्यन् मन्त्रयम् इमम् अभ्यासन्तः इडपतिम्। तदुपस्पर्शनादेव विधीनर्धुतमलाशया जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुत्र महततपा। तदुपस्पर्शनादेव विधीनर्धुतमलाशया जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्सत्तत्र महतत्तपा। तत उस तीर्थस्थान के उपस्पर्शनात् जल में नियमित स्नान करने में, नियमित स्नान करने से एव निसंदेह विनिर्धुत पूर्णतया शुद्ध हुए मल आशया हृदय के भीतर की सारी धूल से जपंता कीर्तन करते या गुनगुनाते हुए ब्रह्म ऊं से शुरू होने वाले मंत्र यथा ऊं तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरया परमम चरम लक्ष्य तेपु संपन्न किया। तत्र वहा महत महान तपः तपस्या। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली को ही तरह तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदयों की सारी मलिन भौतिक इच्छाएं दूर हो गई। उन्होंने ओमकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जप किया और कठिन तपस्या की। तात्पर्य, प्रत्येक वैदिक मंत्र ब्रह्म कहलाता है क्योंकि प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में ओम या ओमकार ब्रह्माक्षर होता है। उदाहरणार्थ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, प्रणवा सर्ववेदेशु सारे वैदिक मंत्रों में मेरा प्रतिनिधित्व प्रणव या ओमकार द्वारा होता है। इस तरह ओमकार से प्रारंभ होने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण कृष्ण के नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण है। इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई चाहे ओमकार उच्चारण करे या भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित करे, अर्थ एक सा होता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह संस्तुति की है कि इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाए। यद्यपि हरे कृष्ण तथा ओमकार से प्रसन्न होने वाले वैदिक मंत्रों में कोई अंतर नहीं है, किंतु इस युग के आध्यात्मिक आंदोलन के नायक श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसी मंत्र का कीर्तन करे। तो अपने परम आराध्य श्रील गुरुदेव के चरण में प्रणाम करते हुए, श्रील प्रभुपाद जी के चरण में प्रणाम करते हुए, श्रील गौरनिताय श्री राधाराज जी और सीताराम लक्ष्मण के चरण में प्रणाम करते हुए, और आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आज अक्षय तृतीया का दिन है और मेरा प्रयास है कि अक्षय तृतीया चंदन यात्रा की महिमा को गाने का प्रयास करूं। तो आप सब लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश सागरजातं सहगना लघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नित्यानंदमहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनामाप्रदं देवं अवधूता शिरोमणिं आनंदलीलामय विग्रहाय हेमांब दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसा प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के दिन की महिमा इतनी विशेष है कि 15 मिनट तो महिमा गाने में चले, मतलब बताने के लिए कि आज की कौन कौन से दिन, आज कौन कौन सी घटनाएं आज के दिन घटी थी, इसी चीजों को बताने 15 मिनट जाएंगे। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। जगन्नाथपुरी में 21 वैसे तो 42 दिन का चंदन यात्रा होती है वहां पे, लेकिन 21 दिन के चंदन यात्रा के पर्व की आज शुरुआत होती है। आज ही के दिन त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन गंगा जी धरती पर प्रकट हुई थी। और आज का दिन इतना शुभ है कि वैसे दिन तो कुछ दिन शुभ होते हैं, कुछ मुहूर्त शुभ होता है, लेकिन आज का पूरा दिन ही शुभ है। आज किसी भी कार्य करने के लिए किसी भी तरह का मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का पूरा दिन बहुत ही शुभ, कोई भी कार्य करने के लिए शुभ है। और लेकिन विशेष करके भगवान का नाम जप, भगवत कीर्तन, कथा श्रवण कीर्तन, ये करने में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, क्योंकि इसका जो फल है वो हजारों गुना मिलेगा। माधव वैष्णव संप्रदाय के अनुसार आज भगवान परशुराम जी का प्राकट्य दिवस है और भगवान श्री नरनारायण ऋषि का भी प्राकट्य दिवस है और भगवान श्री हयग्रीव का भी आज प्राकट्य दिवस है। श्री विजयध्वज तीर्थ जो एक संप्रदाय के आचार्य है, श्रील प्रभुपाद जी उन काफी बार उनके अपने कमेंट्री में टीका में उनका उल्लेख करते हैं, तो आज उनका तिरोभाव दिन है। वे अपने श्रीमद् भागवत पर टीका के लिए बहुत विख्यात हैं और ये पेजावर मठ के छठे पीठाधिपति हैं। आज के दिन ही भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था और श्री कृष्ण मठ द्वारा वो अक्षय पात्र जो द्रौपदी को मिला था माध्वाचार्य जी के पास, माध्वाचार्य ने अपने अनुयायियों को दिया था। तो आज श्री कृष्ण मठ में उसी अक्षय पात्र की आज विशेष रूप से पूजा होती है। पूजा तो रोज होती है, लेकिन आज विशेष रूप से उसकी महिमा गाकर आज उसकी पूजा की जाती है। इसका अर्थ है कि अक्षय पात्र आज भी माधव संप्रदाय में उपस्थित है। तीर्थ स्नान, अधिक से अधिक जप करना और जौ के पदार्थों, बार्ली कहते हैं, जौ के पदार्थों का आज भगवान को विशेष भोग लगाया जाता है। आज ही के दिन, आज के इस त्यौहार को मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने अपने प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न को इस पर्व को मनाने का आदेश दिया था, क्योंकि वैशाख के महीने में बहुत गर्मी होती है और भगवान तापग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ ने महाराज इंद्रद्युम्न को कहा था कि मेरे पूरे संपूर्ण शरीर पर चंदन से लेप कीजिए, लेकिन मेरी दो आंखें छोड़ दीजिएगा। तो महाराज आज उस समय से आज तक भगवान जगन्नाथ के पूर्ण शरीर में, पूर्ण श्रीअंग पर चंदन लेप किया जाता है और दो आंख भगवान दूसरों के दर्शन करने के लिए छोड़ देते हैं। वेदों के अनुसार आज ही के दिन वेदव्यास जी और गणेश जी ने मिलकर महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। यहां पर पीछे जो फोटो है वह आज ही का दिन है। महाभारत में कथा आती है कि पांडव जब अज्ञातवास में थे, उस समय वे अपना अज्ञातवास राजा विराट के प्रदेश में बिता रहे थे, और जब उनका जो सेनापति था कीचक, उसने जब द्रौपदी के साथ दुस्साहस किया था, फिर भीम ने क्रोध में आकर उसका वध कर दिया। इससे, क्योंकि कीचक का जो वध है वो सिर्फ तीन या चार लोग संसार में कर सकते थे, एक तो भीष्म पितामह थे, एक तो कर्ण था और एक भीम था, और भी कोई है, लेकिन जो राजा विराट थे वो समझ गए कि निश्चित रूप से ये भीम होना चाहिए, और ये भीम है तो सारे पांडव यही होने चाहिए। तो हर्ष और गर्व हुआ उसे अपने सेनापति कीचक की मृत्यु का, तो उसको कुछ असर नहीं पड़ा, लेकिन वो इतना हर्ष और गर्वित हो गया कि उसने अपने आप को महाराज युधिष्ठिर के चरणों में समर्पित किया और कहा कि हे पांडव जन्म, आपने ओरिजिनल वेश में आई है, अब आपको दास बनकर रहने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने ओरिजिनल वेश में आकर आप स्वच्छंद रूप से विहार कीजिए। तो और पांडव से उनकी घनिष्ठ मित्रता हुई, वो हमेशा एकत्रित रह के कृष्ण के विषय में चर्चा करते रहते हैं। जब पांडव उपस्थित हो, जैसे पांडव जैसे महाजन उपस्थित हो, वहां पर तो कृष्ण चर्चा होगी ही, क्योंकि पांडव और कृष्ण का तो अभिन्न है, पांडव और भगवान कृष्ण का जीवन है वो एकदम अभिन्न है। तो एक बार जब कृष्ण की कथा सुनते रहते थे, वैसे भी स्वाभाविक महाराज विराट जो थे वो भगवान से प्रेम करते थे, और पांडवों की संगति प्राप्त कर उनका प्रेम बढ़ गया, और एक बार महाराज युधिष्ठिर के चरणों में उन्होंने एक जिज्ञासा व्यक्त की, कही कि हे महाराज युधिष्ठिर, कृपा करके मुझे कृष्ण और बलराम के दर्शन करने हैं। तो महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न होकर कहे, ठीक है, आप चंदन यात्रा, आप भगवान के लिए प्रचुर मात्रा में चंदन लाइए और उनकी नौका विहार की व्यवस्था कीजिए, और उनके नौका विहार की व्यवस्था कीजिएगा। तो महाराज युधिष्ठिर के आज्ञा पाकर राजा विराट ने वो सारी व्यवस्था कर दी, चंदन प्रचुर मात्रा में चंदन लाया, और भगवान के लिए एक छोटे से सरोवर में चंदन यात्रा हो इसलिए व्यवस्था, उनकी नौका विहार हो इसलिए उनकी व्यवस्था कर दी। और महाराज पांडवों की कृपा से और महाराज जो राजा ययाति है सॉरी राजा विराट है उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां पर कृष्ण बलराम वहां पर उपस्थित हो गए, और कृष्ण बलराम को उपस्थित देखकर राजा विराट को आनंदित हुआ, और उन्होंने भगवान को चंदन लेप किया, और उन्होंने एक नौका जो सरोवर बनाया था उसमें खुद राजा ने भगवान की इस नौका विहार की यात्रा की। तो इसी घटना को स्मरण करते हुए जगन्नाथ जी ने महाराज इंद्रद्युम्न को यह आदेश दिया था कि हे इंद्रद्युम्न, वो जो घटना हुई तो मैं उससे इतना प्रसन्न हूं, इतना खुश हूं कि मुझे चंदन लगाना चाहता हूं मैं। तो हे इंद्रद्युम्न, कृपा करके मेरे लिए प्रचुर मात्रा में चंदन की व्यवस्था करो और मंदिर के भीतर ही एक सरोवर बनाओ जिसमें मैं अपनी नौका विहार कर सकूं। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने वो जो उत्सव था, ये पर्व था, ये इसकी शुरुआत कर दी। आज ही के दिन जगन्नाथ पुरी की जो रथ यात्रा होती है उसके जो रथ बनने हैं वो आज से शुरू होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता की आज्ञा पाकर नीलाचल में रहने के लिए तैयार हो गए। वास्तव में उनकी इच्छा थी कि वो नीलाचल में रहे, लेकिन माता की आज्ञा का बहाना करके चैतन्य महाप्रभु अपने नित्यानंद और दो परिकरों के साथ जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। और रास्ते में वे गोपीनाथ वे रेमुना पहुंचे, क्योंकि पुरी जाने के रास्ते में रेमुना आता है और वे वहां पर रुक गए। और वहां पर उन्होंने गोपीनाथ जी के शीर, जो क्षीर बनती थी, उसको चखा। और उस शीर खाते खाते उनको ईश्वरपुरी ने उनको एक कथा सुनाई थी, उसका स्मरण होया। वो भी चंदन यात्रा के संबंधित ही है, इसलिए मैं आज उस कथा का वर्णन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में प्रसंग आता है। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि एक बार माधवेंद्रपुरी वृंदावन भ्रमण करते करते गोवर्धन पहुंचे, और गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद गोविंद कुंड के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गोविंद कुंड में स्नान इत्यादि करके माधवेंद्रपुरी संध्या वंदन करने लगे। और संध्या वंदन कर रहे थे कि उसी समय एक छोटा सा बालक उनके पास आता है, कहता है कि हे माधवेंद्रपुरी ठाकुर, तुम उपास क्यों करते रहते हो, ये दूध पियो और अपनी तृष्णा को शांत करो। और माधवेंद्रपुरी ठाकुर उस बालक की सुंदरता देखकर इतने विस्मित हुए कि इतना सुंदर बालक, और माधवेंद्रपुरी इतने चकित हुए कि मैं तो भगवान कृष्ण के अलावा मेरी मति की जाति नहीं, लेकिन यहां पर ये बालक से मैं इतना आकर्षित क्यों हो रहा हूं। और ये इनका कुछ व्रत था कि मैं आज कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। तो इन्होंने बालक की बात, जैसे बालक ने दूध दिया तो माधवेंद्रपुरी ने पी लिया, और वो दूध इतना दिव्य था कि वो दूध पीकर उनमें प्रेम उन्माद हो गया और माधवेंद्रपुरी समाधिष्ठित हो गए। तब उस बालक से माधवेंद्रपुरी से, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो बालक ने कहा कि मैं इसी आसपास के गांव का हूं और मैं यहां पर गौवे चराता रहता हूं। तो मेरी माँ तो उस बालक ने कहा कि यहां पर कुछ स्त्रियां गोविंद कुंड पर पानी भरने आई थी, उन स्त्रियों ने मुझसे कहा कि एक बाबा वहां पर बैठे बेचारे भूखे प्यासे लग रहे, तुम जाके उनको दूध दे, इसलिए मैं उनकी बात मानकर आपको दूध देने आ गया। तो आप दूध पीजिए, मैं बाद में आकर आपसे ये पात्र ले जाऊंगा। तो जब वो बालक चला गया तो माधवेंद्रपुरी ठाकुर उस बालक की विरह में रोने लग गए, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि विरह किस बात का, कि बालक कौन था। और ये विचार करते कर रात्रि हो गई और माधवेंद्रपुरी को नींद आ गई, वो सो गए। और जब वे उठे सो गए तो उनको एक स्वप्न पड़ा, और स्वप्न में वही बालक जिसका वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो आएगा और ये पात्र ले जाएगा, वही बालक स्वप्न में आया और उनको हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले गया एक कुंज के पास और कहा, हे माधव, मैं इस कुंज में रहता हूं, मेरा नाम गोपाल है, मैं इस कुंज में रहता हूं और कितने दिनों से मैं इस जमीन के अंदर गड़ा हुआ हूं। और जानते हो माधव, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम कब आओगे और मुझे इस कुंज से निकालोगे और मेरी पूजा करोगे। हे माधव, तो जल्दी आकर मुझे यहां इसमें से निकालो। तो माधव तुझ गोपाल की जो स्वप्न गोपाल का जो स्वप्न गिरा उससे उसकी नींद टूट गई, माधवेंद्रपुरी की नींद टूट गई। और दूसरे दिन गांव में गए और गांव में माधवेंद्रपुरी ने अपना जो स्वप्न गोपाल जी ने बताया था उसका वर्णन कर दिया, और सारे गांव वालों के साथ वे उस कुंज की तरफ गए और उस कुंज से श्री गोपाल जी को बाहर निकाला। और गोपाल जी को अच्छे से गोविंद कुंड से हजारों हजारों लीटर पानी लेकर आके उनको स्नान करवाया गया और उनको शीतलता दी गई, और उनको गिरिराज जी के ऊपर ही एक शिला पर उनको स्थापित किया गया और माधवेंद्रपुरी ने उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। अब पूजा प्रारंभ हो गई तो गोपाल जी दोबारा एक बार फिर माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि माधव, मैं बहुत दिन से ना जमीन के अंदर गड़ा हुआ था और बहुत दिन से मुझे गर्मी लग रही थी, तो तुम तो रोज मुझे तेल से मसाज करते हो, ठंडा पानी से मुझे ये करते हो, लेकिन मेरी जो गर्मी है, मेरा जो ताप है, वो जा नहीं रहा है। इसलिए माधव, जगन्नाथपुरी जाओ और मेरे लिए मलयगिरी का चंदन जो जगन्नाथ जी इस्तेमाल करते हैं ना वो ले आओ। तो माधवेंद्रपुरी तो प्रसन्न हुए कि भगवान भगवान कुछ मांग रहे हैं। जब बलि महाराज के पास भगवान जो छोटे से वामन भगवान गए थे तो शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये महा भगवान विष्णु है और तुरंत शुक्राचार्य जी ने बता दिया बलि महाराज है बलि ये विष्णु है ये तुम्हारे सारे संपत्ति सब कुछ लेने तुमको भिखारी बनाने आया है। तो बलि कहे कि शुक्राचार्य जी भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं भगवान मुझसे कुछ मांग रहा है मैं उनको ना दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसके लिए मुझे आपकी अवज्ञा करनी पड़े तो भी मैं करूंगा। और शुक्राचार्य जी की अवज्ञा करके अपने गुरुदेव की अवज्ञा करके शुक्राचार्य जी की क्योंकि वो भगवान की सेवा को रोक रहे थे और शुक्राचार्य जी की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु को अपना सब कुछ दे दिया। तो यहां पर माधवेंद्रपुरी इतने हर्षित हो गए कि भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं। तो तुरंत बिना किसी सोच विचार किए माधवेंद्रपुरी गोपाल जी की सेवा को गोपाल जी की जो सेवा अच्छा जो चल रही थी दिनचर्या चल रही थी उसको अपने दो बंगाली शिष्यों को सौंप कर उनको सारी विधि समझाकर माधवेंद्रपुरी चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। और जगन्नाथपुरी कोई पास में नहीं था हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करनी पड़ती थी हजारों किलोमीटर और लेकिन भगवान के प्रेम के लिए माधवेंद्रपुरी ने इतनी बड़ी जो यात्रा थी वो तय कर ली हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। उसके बाद जब रास्ते में वे भी रेमुना पहुंचे और रेमुना में उन्होंने गोपीनाथ जी की जिस थाट बाट से सेवा होती थी वो देख ली और एक विशेष पदार्थ पुजारी ने बताया कि गोपीनाथ जी के लिए एक विशेष पदार्थ बनता है क्षीर बनती है। तो माधवेंद्रपुरी अयाचक वृत्ति के थे मतलब बिना वो मांगते नहीं किसी से अगर भगवान की कृपा से अगर कुछ प्राप्त हो जाए स्वाभाविक रूप से तो ही उसको स्वीकार करते थे लेकिन कभी मांगते नहीं थे किसी से तो इस वृत्ति के थे। लेकिन फिर भी ऐसे माधवेंद्रपुरी के हृदय में इच्छा हो गई कि इस क्षीर को थोड़ा चख लिया जाए। क्यों? क्योंकि इस क्षीर को चख कर मैं ऐसी क्षीर अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। देखिए कि इस तरह से माधवेंद्रपुरी का प्रेम झलक रहा है। तो फिर तुरंत माधवेंद्रपुरी को स्मरण आया कि अरे मैं तो अयाचक वृत्ति मैंने तो व्रत लिया है कि मैं अयाचक वृत्ति का पालन करूंगा तो मैंने तो ये अपना व्रत भंग कर लिया इसलिए वो रोने लग गए और एक दुकान के बाहर बैठकर अपना कीर्तन करने लग गए। अब यहां पर गोपीनाथ जी भगवान अपने भक्त की इच्छा को जानते हुए समझते हुए रात को क्या होता था कि गोपीनाथ जी के पास 12 बर्तनों में क्षीर का भोग लगता था 12 बर्तनों में। तो गोपीनाथ जी ने क्या किया एक क्षीर का जो बर्तन था वो अपने धोती के नीचे छुपा के रख दिया और जब सारा जो पुजारी आया तो उसने स्वाभाविक रूप से गिना तो नहीं कि कितने बर्तन है सारे बर्तनों को उठा के रख दिया ताकि सुबह उठ के उसको बांट सके। फिर गोपीनाथ जी ने उस पुजारी को स्वप्न दिया हरे कृष्णा प्रभु उठो जरा मैंने अपने भक्त के लिए क्षीर चुरा के रखी है तो वो भक्त बाहर बैठे हुए हैं तो तुम कृपया करके जाकर उनको ये क्षीर दे दो। तो ये पुजारी पहले तो सोचा कि यार ये भगवान ने क्षीर चुराई भगवान की चोरी करेंगे तो फिर भी वो भगवान ने स्वप्न दिया इसलिए वो उठा स्नान किया और मंदिर खोला तो देखा सच में भगवान के धोती के पीछे एक क्षीर का मटका वहां पर था। तो वहां पर भगवान को प्रणाम किया कहा प्रभु जो आपकी आज्ञा और क्षीर का मटका लाते हुए बाहर पड़े निकल पड़े और जोर जोर चला कि माधवेंद्रपुरी कौन है तुम्हारे जैसा भाग्यवान त्रिभुवन में कोई नहीं है क्योंकि और चिल्ला रहे थे कि भगवान गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए क्षीर चुराई है कृपा करके आगे क्षीर ले लीजिए। तो वहां पर मैं माधवेंद्र हूं तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी ने आवाज दिया और उन्होंने गोपीनाथ जी की मतलब उस सारी घटना को सुना और माधवेंद्रपुरी गदगद हो गए और उन्होंने वो क्षीर को ले लिया और खा उसका आस्वादन किया। अभी इस सारी घटना जब हो गई तो सब जगह मीडिया में आज तक जी न्यूज सब जगह बात फैल गई और सब जगह ये खबर फैलने लग गई कि बाप रे भगवान ने इनके लिए क्षीर चुराई है तो सब जगह इनकी प्रतिष्ठा मान सम्मान सब सब जगह इनकी चर्चा होने लग गई। फिर माधेन्द्रपुरी डर गए कि अरे यार, डर गए कि अगर यहां पर मैं रहूंगा तो लोगों की भीड़ उमड़ेगी और वो सब कथाएं चलेंगी, इससे अच्छा मैं यहां से निकल चलता हूं। और ये जगन्नाथपुरी के लिए अपना जो वास्तविक कार्य था, इनका जो कार्य था गोपाल जी के लिए चंदन लाना, उसके लिए वो जगन्नाथपुरी चल पड़े। लेकिन जब पुरी चले गए, जब पुरी पहुंच गए, तो माधवेंद्रपुरी पहुंचने से पहले वहां के पांडवों को खबर पहुंच चुकी थी कि रेबुना के गोपीनाथ जी ने इनके लिए शीर चुराई है और इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है कि मेरा नाम आज से होगा शीर चुरा गोपीनाथ। तो इनकी महिमा पहले से ही पहुंच गई। और जब माधवेंद्रपुरी वहां पर पहुंचे तो सारे पुरी का जो समाज था, पांडवों का समाज था, वो माधवेंद्रपुरी के चरणों में गिर पड़ा और पूछा कि हे माधवेंद्रपुरी ठाकुर, आपका क्या प्रयोजन है, जरा बताइए प्रयोजन क्या आपका। तो उन्होंने अपना सारा, अपने गोपाल जी की इच्छा व्यक्त की, कहा कि मैं अपने गोपाल जी के लिए चंदन और कर्पूर लाने आया हूं, मेरे गोपाल जी को गर्मी लग रही है और मैं जगन्नाथ जी को यहाँ पे मलयगिरी का चंदन लगता है, वो चंदन गोपाल जी मांग रहे हैं। तो राजा ने जब ये सुना कि गोपाल जी मांग रहे हैं, तो राजा ने एक मन चंदन, शायद 40 किलो के आसपास कुछ होता है वो, हाँ 40 किलो के आसपास कुछ होता है वो चंदन गोपी माधवेंद्रपुरी जी को दे दिया और साथ ही साथ बहुत सारा कर्पूर भी दे दिया और दो सेवक दे दिए चंदन ढोने के लिए और एक पत्र लिखकर दे दिया। पत्र ये लिखकर दिया कि ये चंदन गोपाल जी के जा रहा है, कृपा करके कोई भी अधिकारी किसी भी राज्य का हो तो ये इनको रोका नहीं, इनसे टैक्स ना वसूल करे। और माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्नता के साथ कि गोपाल जी के लिए चंदन मिल गया है, वो आगे चल पड़े। और फिर आते हुए रेमुना आके रुक गए, मतलब रास्ता तो वही था, तो फिर आगे रेमुना में आ गए। और रेमुना में आ गए तो इस बार उनको शीर मांगनी नहीं पड़ी, पुजारी ने अपने आप ही लाकर उनको शीर दे दी और कहे कि प्रभु फिर से गोपीनाथ जी को कष्ट होगा चुराने के लिए, इसलिए आप ले लीजिए। फिर माधवेंद्रपुरी ने शीर ली और उसी दिन रात को वहीं पर उन्होंने विश्राम किया। और विश्राम किया तो तीसरी बार गोपाल जी ने स्वप्न दिया और तीसरी बार गोपाल जी ने स्वप्न ये दिया कि प्रभु माधवेंद्र, मुझे चंदन प्राप्त हो चुका है, इसलिए इतना भारी चंदन, 40 किलो चंदन यहां पर लाने की कोई, ब्रज में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझमें और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए माधवेंद्र गोपीनाथ जी को ही वो जो चंदन है उसको घिसो, उसमें कर्पूर मिलाओ, उसका लेप तैयार करो और गोपीनाथ जी को लगा दो। अगर तुम गोपीनाथ जी को चंदन लगा दोगे तो मेरा ताप है वो मिट जाएगा, क्योंकि मुझमें और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी ने गोपाल की आज्ञा मानकर गोपीनाथ जी के लिए चंदन घिसना और कर्पूर मिलाकर उनका चंदन का लेप करना प्रारंभ कर दिया। अब चैतन्य महाप्रभु, ये जो गोपाल जी है जो बार बार माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं, ये गोपाल जी कौन है जानते हैं? श्रीनाथ जी ही गोपाल जी है। कालांतर के बाद गोपाल जी वहां से माँ वल्लभाचार्य जी के हाथों से गुजरात चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु और आदि लोगों से जो कथा सुन रहे थे, वे कहते हैं कि जरा माधवेंद्रपुरी की प्रेम पराकाष्ठा पर विचार करना चाहिए कि उनके चित्त में कितना अलौकिक प्रेम है, प्योर डिवोशनल सर्विस। ये इतने विरक्त थे कि ग्राम में वार्ता हो जाए इसके भय से एक सेक्रेटरी भी नहीं रखते थे कि उसके वो आएगा तो उसके साथ बिना मतलब की चर्चा हो जाएगी, भगवान की कथा के व्यतिरिक्त कोई बात हो जाएगी, इसलिए माधवेंद्रपुरी कोई असिस्टेंट भी नहीं रखते थे और अकेले भ्रमण करते थे। तो उसी माधवेंद्रपुरी ने गोपाल की, इतने विरक्त थे और अयाचक वृत्ति के थे, मतलब जब मिल जाए भगवान कृपा तो ही खाते थे, इतना कष्ट और इतना सब माधवेंद्रपुरी वैसे ही उठाते थे। और जब गोपाल की आज्ञा मिली तो बिना हिचकिचाहट एक ही स्वप्न में उनको आज्ञा मिली और उनकी आज्ञा मानकर गोपाल जी के लिए वे चंदन लाने के लिए चल पड़े। तो जब माधेन्द्रपुरी जब निकलते थे, जब जगन्नाथपुरी से निकले थे, तो उत्कल क्षेत्र के ही अधिकारी उनको रोका करते थे। तो वो अपने राजा का पत्र दिखाते थे कि देखिए पत्र है, तो फिर उनको छोड़ा जाता था। तो गोपाल जी ने विचार किया कि अरे आगे तो म्लेच्छों का राज्य है, आगे कुछ समय जाने के बाद मुसलमानों का राज आएगा, तो वहां पर तो दिक्कत करेंगे, मेरा नाम सुनते ही ये लोग तो माधेन्द्रपुरी को कष्ट हो सकता है। इसलिए गोपीनाथ इसलिए गोपाल जी ने माधेन्द्रपुरी को स्वप्न दिया दया आकर कि मुझे माधेन्द्रपुरी से इतना कष्ट नहीं करवाना है कि वो इतने म्लेच्छों के राज्य से गुजरते हुए मेरे लिए चंदन लेकर आए और पता नहीं क्या होगा। इसलिए भगवान गोपाल जी ने माधेन्द्रपुरी को आदेश दे दिया कि वो चंदन गोपीनाथ जी को ही लगा देना। तो महाप्रभु कहते हैं कि प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम का यह स्वभाव है कि व्यक्ति अपने दुख या विघ्नादि का विचार नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की आयु के थे जब उन्होंने निर्णय किया कि मुझे विदेश में जाके प्रचार करना है। यह इनका भगवान अपने गुरु और भगवान के लिए प्रगाढ़ प्रेम ही था कि उनकी आज्ञा पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की आयु में विदेश जाने का निर्णय किया, और उसका फल है कि आज संपूर्ण विश्व भर में आज कृष्ण भावना का प्रचार हुआ है। तो ये इनका प्रगाढ़ प्रेम ही है। जिस तरह से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते कि प्रगाढ़ प्रेम है यही स्वभाव आचार, निजे दुख विघ्नादि ना करे विचार। प्रभुपाद जी ने अपने अपने ऊपर जो कष्ट होंगे और विचार की स्थिति तो वही है, माधेन्द्रपुरी म्लेच्छों के राज्य में आए थे और यहाँ पे प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए थे, वहां पे प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव के वचनों पर पूरा विश्वास करते हुए चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी वहां पर गए और उन्होंने वहां पर कृष्ण भावना का प्रचार किया। तो यही तार गाढ़ प्रेम लोके दिखाई थे, गोपाल तरी आज्ञा अधिल चंदन अनिते। माधेन्द्रपुरी के इसी प्रेम को दिखाने के लिए गोपाल ने उनको चंदन लाने की आज्ञा दी थी, है कि नहीं विशेष बात कि उनके प्रेम का, उनकी जो भक्ति है उसका सर्वत्र प्रचार हो जाए, और उससे क्या होगा कि माधेन्द्रपुरी जैसे ही हम लोग भी कृष्ण से प्रेम करें। इसलिए भगवान ने माधेन्द्रपुरी को इतना बड़ा कार्य सौंपा था। देखिए भगवान, अभी धीरे धीरे हम लोग आज के श्लोक पर चलते हैं। श्री भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, 5000 साल पूर्व आए थे, और हर युग में आते रहते हैं और विविध प्रकार की लीला करते रहते हैं। तो किस लिए लीला करते हैं? संसार में जो बद्ध जीव है वे उस लीला को देखेंगे, सुनेंगे, तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। भगवान की लीला कथाओं को जो हम सुनते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। तो उसी तरह से वो लीला भगवान की आज भी चल रही है। श्रीमद भागवत जब भगवान का प्रकट हुआ था, जब भगवान अपने धाम में चले गए थे अपने परिवारों के साथ, तब श्रीमद भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ था, और श्रीमद भागवत साधुजन चर्चा करते रहते, कथा करते रहते हैं, और आज भी वही प्रभाव है जो भगवान 5000 साल पूर्व जो भगवान प्रकट हुए थे उस समय जो उनकी कथा का प्रभाव, लीला का प्रभाव था, आज भी श्रीमद भागवत की जो कथा श्रवण कीर्तन करते हैं आज भी वही प्रभाव होता है। जीव जो है वो भगवान की जब कृष्ण कथा सुनता है तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और अपना संसार बंधन को काट देता है। तो यहां नारद जी भी जब दक्ष प्रजापति के जब शुरुआत में जब दक्ष प्रजापति ने इनको आदेश दिया था अपने 10,000 पुत्रों को जाकर प्रजा का विस्तार करने के लिए, प्रजा का विस्तार करने के लिए आप घोर तपस्या कीजिए और आपको जो बल मिलेगा तो उससे आप प्रजा की उत्पत्ति कीजिए, तो ये आदेश पाकर इनके 10,000 पुत्र चले गए थे नारायण सरोवर के पास। और नारायण सरोवर में जाकर इन्होंने तपस्या कर रहे थे भोग विलास के लिए, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे थे। तो नारद जी पर दया आ गई और नारद जी ने कृपा करके इनको भगवत प्राप्ति का रास्ता बता दिया। अब ये दक्ष प्रजापति के पास जब खबर पहुंची कि नारद जी ने जिस तरह से प्रहलाद ध्रुव पर कृपा कर दी थी, नारद जी ने उसी तरह से मेरे 10,000 पुत्रों पर भी कृपा कर दी और इनको विरक्त बना दिया, भगवान का भक्त बना दिया, तो दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने आके दक्ष प्रजापति को समझा दिया, अरे नारद जी है भाई, उनका कार्य वही है जिस तरह से आपका कार्य प्रजा उत्पन्न करना है, नारद जी का काम है वही वही करना, वही काम करना है, कृष्ण कथा करना रहना है, जो भी बद्ध जीव उनको मिलते रहते रास्ते में सबको उद्धार करते रहते हैं, तो उनको क्यों तकलीफ, उनसे क्यों प्रभावित हो रहा था, आप अपना कार्य कीजिए, वो अपना कार्य करेंगे। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने फिर से 1000 पुत्र उत्पन्न कर दिया। और एक हजार पुत्रों ने यह सुना कि मेरे 10000 भाई नारायण सरोवर में जाकर भगवान की प्राप्ति कर लिए थे नारद जी की कृपा से, तो वो उन्होंने भी उसी उद्देश्य से मन में इसी उद्देश्य से कि अपने हमें अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करना चाहिए, तो वो उसी तरह नारायण सरोवर के पास चले गए। और नारायण सरोवर के पास एक जो नारायण सरोवर में डुबकी मारकर बाहर आ गए, और उनके चित्त पर इतना विशिष्ट प्रभाव हुआ कि उनका जो सारा हृदय की मलिनता थी वो दूर हो गई, और वे भी वहां पर उस स्थान पर प्रणव और ओमकार द्वारा जो मंत्र है उनका जप करने लग गए। तो आगे जाके नारद जी भी आएंगे और उनका भी उद्धार करेंगे। तो वे तो इस तरह से आज अक्षय तृतीया है, और अधिक से अधिक जप करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान की लीला कथाओं को सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के इसके साथ मैं आज कथा को समाप्त करता हूं। यदि किसी का प्रश्न है, जिज्ञासा है आज के कथा के संबंधित, तो पूछ सकता है।
What is the literal meaning of Akshay Tritiya?
Akshay मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, कैसे, अमर, क्षय, जिसका क्षय नहीं होता है। और तृतीया मतलब तीसरा दिन है आज का। तो ये वैशाख महीने में आता है, और इसका ये बहुत विशेष दिन है आज का कि कोई भी कही, जिस तरह से हम लोग धाम में रहते हैं और धाम में रहने से कोई भी कार्य करेंगे भक्ति के संबंधित तो हजारों गुना बढ़ जाता है, उसी तरह से ये किसी भी स्थान पर आज के दिन अगर अक्षय तृतीया के दिन अगर जप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो भगवान के लिए प्रेम जो है अधिक से अधिक बढ़ जाएगा। इस ग्रह रेवती मन रूप कुछ प्रश्न पूछना चाहता है या कमेंट देना चाहता है।
हरे कृष्णा। धन्यवाद, आपने अक्षय तृतीया की बहुत सुंदर जानकारी दी। आपने कहा कि गोपाल जी गुजरात में नहीं है, राजस्थान में है।
अच्छा, राजस्थान में है। और फिलहाल इस बार गुजरात छाया हुआ पूरे भारत में, इसलिए गुजरात निकल गया,
नहीं राजस्थान में।
धन्यवाद रोज।
हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवत महापुराण की, अक्षय तृतीया की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय।